गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर हमें बात करने वाले हैं जो कि है एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट्स। मेरा नाम है प्रतीक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स बिगिन। मार्केटिंग इज अबाउट क्रिएटिंग मार्केट्स बाय सेटिस्फाइंग टारगेट कंज्यूमर्स नीड्स एंड वॉन्ट्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। मतलब अपने कस्टमर्स को, टारगेट कस्टमर्स को इतना सेटिस्फाई कर देना ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ देखे ही ना और उनसे कॉम्पिटिटर से बेटर सेटिस्फाई करना। दिस रिक्वायर्स एक्सेसिंग वैल्यू एज परसीव्ड बाय द कस्टमर बाय डेवलपिंग इनसाइट्स इनटू टारगेट कस्टमर बिहेवियर। मतलब टोटली परसीव्ड बिहेवियर लेके हमने आगे बढ़ना है और डेवलपिंग इनसाइट्स इनटू टारगेट कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए। व्हाट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर? कंज्यूमर को क्या इन्फ्लुएंस करता है? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वॉन्ट्स। मार्केट्स में फुली अंडरस्टैंड बोथ द थ्योरी एंड रियलिटी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल को उसके उसका बिहेवियर कैसा है, उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका यूज़ कैसा है, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम ये लगाते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर। वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी डेमोग्राफिक पोर्शंस को देखते हुए हम उसका बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, उसके साथ उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फैमिली एंड अदर की इंस्टीट्यूशंस। अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन द US इज एक्सपोज टू वैल्यू सच एज अचीवमेंट एंड सक्सेस, एक्टिविटी, इफिशेंसी एंड प्रैक्टिस, सिलिब्रिटी, प्रोग्रेस, मटेरियल कम्फर्ट, इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, एक्सटर्नल कम्फर्ट, ह्यूमनिटेरिज्म एंड यूथफुलनेस। अ चाइल्ड ग्रोइंग अप टू इंडिया इज एक्सपोज टू वैल्यू सच एज रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एल्डर्स, honesty and integrity, hard work, achievement and success, humanitarian and compassion. A child grows up in another country might have a different view of self, relationship to others and rituals. Marketers must closely attend to cultural values in every country to understand how to best market their existing products and find opportunities to new products. Each culture consists of small subcultures that provides more specific identification and socialization for their members. Subcultures include nationalities, religious, racial groups, and geographic regions. When subcultures grow large and affluent enough, companies often design specialized marketing programs to serve them. बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी अदर अदर कंट्री का अलग अलग रिलीजन होता है, अलग अलग उनकी कल्चर की वजह से उनकी सारे के सारे फैक्टर्स जो है चेंज हो जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल कह सकते हैं कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो पहले वहाँ के कंज्यूमर्स का बिहेवियर सर्च करती है, उस पर एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है। जैसे मैकडोनल्ड्स एक कंपनी है, अब वो पहले जो वहाँ पे अदर कंट्री में बनाते तो उनका नॉन वेज ज़्यादा चलता है, यहाँ पर उनका वेज जो आइटम्स है वो इंडिया में ज़्यादा चलता है। तो ये उनको कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से उन्होंने अपना प्रोडक्ट्स बनाए हैं और वहाँ उस मार्केट में जाके अपना शेयर टारगेट कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए अपना शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि जो कंज्यूमर को चाहिए अगर आप उनको वही दे दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी चीज़ें कंक्लूडेड और कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। देन द न्यू टॉपिक इज सोशल फैक्टर्स। In addition to cultural factors, social factors such as reference groups, family, and social roles and status affect our buying behavior. मतलब जो हमारे reference groups क्या होते हैं, रेफरेंस मतलब आर ऑल द ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट फेस टू फेस और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन देयर एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स। मतलब जिससे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे हमारा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, हमारा हम उनको जानते हैं और एक दूसरे के बारे में समझते हैं। तो ये सारे के सारे रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं। जो सेकेंड सोशल फैक्टर होता है फैमिली। द फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी एंड फैमिली मेम्बर्स कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप। तो अब जो प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप क्या होता है हमारा, जो वो होते हैं हमारी फैमिली होती है। देन हमारा उसके बाद क्या आती है, हमारे उसमें भी क्या देखी जाती है, पर्सनैलिटी, एज, ऑक्यूपेशन, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ होती है पर्सनल फैक्टर्स के अंदर। अब पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं, मतलब यही जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसी के हिसाब से हर किसी का एक पूरा का पूरा हम उसके कंज्यूमर को बिहेवियर को समझते और उसके लिए कस्टमाइज्ड और टारगेट कंज्यूमर्स को करते हुए उनके लिए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको सेल करते हैं मार्केट के अंदर। तो अब जैसे इंडिया है, पहले अब के आज की डेट में सबसे हमारी कितनी जनरेशन जो है वो सारी की सारी यूथ है, तो यूथ के हिसाब से अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे वो ज़्यादा चलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए हमारे को सारी चीज़ें करनी होती है, जैसे पर्सनैलिटी में एज एंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस कहती हैं। जैसे सपोज करें कोई भी एक बाहर की कंपनी है, MNC है, वो पहले एज एंड स्टेज देखेगी, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक देखेगी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी लोगों की कैसी है और सेल्फ असेसमेंट कैसा है, लाइफ स्टाइल्स एंड वैल्यू, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड किस लेवल का है, मतलब हम कितने पुअरिटी में रहते हैं और कितने मतलब रिच हैं। तो इस टाइप से सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं, मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग बेसिकली, उस पर भी ये देखते हैं कि कोर वैल्यूज़ क्या है, और इन मैनी प्रोडक्ट कैटेगरी कंज्यूमर इवॉल्विंग प्रेफरेंस फॉर नेचुरल हैज लेड टू इंटरेस्टिंग इनोवेशंस। मतलब ये सारे के सारे कई सारे फैक्टर्स को देखते हुए अब हम अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, देन जाके अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जिससे कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। देन की साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अब साइकोलॉजिकली प्रोसेस क्या होते हैं कि दिमाग में, लोगों के दिमाग में इफेक्ट करना कि अगर आपको लेना है तो यही प्रोडक्ट लेना है, यही अच्छा है, तो उनके दिमाग में अपनी ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, इसके ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें मार्केट स्टिमुलाई, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पहले हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में एनालिसिस करेंगे, फिर देन हम प्राइस के बारे में देखेंगे कि हमारे को अपना प्राइस कैसे रखना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, मतलब कैसे कैसे सप्लाई चेन क्या रहेगी, देन उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन उसका जो सेकंड पार्ट आता है अदर स्टिमुलाइज में, हम क्या देखेंगे, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे किस लेवल की है, पॉलिटिकल वहाँ का बिहेवियर कैसा है, और कल्चरल वहाँ पे चीज़ें कैसी, लोगों का कल्चर क्या है। उसके बाद हम इसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं, कंज्यूमर का साइकोलॉजी एंड कंज्यूमर के करेक्टरिस्टिक्स। साइकोलॉजी में कैसे कि हम कंज्यूमर को बोलेंगे, जैसे होता है कई एड्स कैंपेन चलते हैं, जैसे बॉर्नविटा पी लो तो आपके एनर्जी का बूस्टर हो जाएगा, तो या कुछ उनको मोटिवेशन दे देना, तो मोटिवेशन में। देन उनका परसेप्शन कि पहले वो ये यूज़ करते थे, अब उनका परसेप्शन के हिसाब से अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये इसी तरीके से ये चीज़ बनी हुई है, इसमें पहले आप वो टूथपेस्ट के लिए ऐसा करते थे, अब इसमें भी हमने चारकोल डाल दिया, ये डाल दिया, उनके परसेप्शंस को लेकर। देन लर्निंग, उनको कुछ सिखा भी रहे हैं और उनका अपना प्रोडक्ट से एडवर्टाइज और उनको सेल भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली हम इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर उनको मेमोरी, उनके कोई जो पास्ट इवेंट्स है उसको याद दिलाते हुए हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। देन करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कल्चरल, कि वहाँ का माहौल कैसे है, वहाँ पे रिलीजन सारे कैसे हैं, लोग किस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, क्या करते हैं, कल्चरल पॉइंट्स को देखते हुए। सेकंड सोशल, वहाँ का समाज किस टाइप का है, किस चीज़ को मानता है, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए। देन पर्सनल, पर्सनल वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, इंडिविजुअल लोगों के एनालिसिस करते हुए हम वहाँ पे उनके लिए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और उनको टारगेट कर रहे हैं। अब अगर हम कंज्यूमर का साइकोलॉजी देख लेते हैं तो फिर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, अब वो हमारे प्रोडक्ट्स को क्यों बाई करेगा। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना कि वहाँ पे प्रॉब्लम, पहले मार्केट के अंदर देखना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, किस चीज़ की प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, उसी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करें। देन इंफॉर्मेशन सर्च, फिर वहाँ पे के सारे रिसर्च करना कि हाँ अगर हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं चलेगा भी, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या होगा, कितने प्राइस में होगा, कैसे हमारे को करना होगा, ये सारे के सारे रिसर्च एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन लेना। फिर आता है इवेल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इसके कितने ऑल्टरनेटिव्स है, देखना कि इसके लिए और कोई ऑल्टरनेटिव है, ये इसके अलावा हम और कुछ कर सकते हैं, इसमें बेटर कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस हैं। देन फोर्थ परचेज डिसीजन, परचेज डिसीजन बेसिकली अब वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ही क्यों खरीदे, अगर उसको समझ आया हाँ भाई ये मेरे पास है अब मैं इसी को ख़रीद लूँ, या मतलब कोई और देख लूँ, मतलब अब उसने ऑल्टरनेटिव्स देख लिया, उसको लगा ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, इसी को ख़रीदना ज़्यादा बेटर होगा। पोस्ट परचेज बिहेवियर में कि मतलब इन फ्यूचर में वो कैसे प्रोडक्ट को और क्या क्या करते हुए अपनी चीज़ों को देखते हुए दूसरे प्रोडक्ट्स को, या अभी थोड़े टाइम के लिए अपने पोस्ट परचेज करा, अभी थोड़े टाइम के लिए रुक रहे हो, बाद में उस चीज़ को वो परचेज करेगा। परचेज डिसीजन, देन फाइनल डिसीजन होगा उसका परचेज, अब वो देखेगा प्रोडक्ट चॉइस, प्रोडक्ट की चॉइस देखेगा, ये ज़्यादा अच्छा है या दूसरा ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देखेगा। फिर वो ब्रांड चॉइस देखेगा कि मतलब जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो प्रोडक्ट में हमारा कुर्ता पजामा चाहिए, शर्ट पैंट चाहिए, या जीन्स चाहिए, या फॉर्मल चाहिए, तो हमारे कैजुअल चाहिए, तो बहुत सारी वराइटीज़ होते हैं, उसमें हमारे को पहले प्रोडक्ट देखना पड़ेगा नहीं इस बार मैंने ये लेना है, उसके बाद हम ब्रांड देखेंगे अब कौन सा ले, रेमंड लें या दूसरा लें, कोई भी मतलब एक जो है हमारे ब्रांड्स हैं उनमें से कॉबले में किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, जो भी अदर ब्रांड्स हैं कौन सा लें। देन डीलर चॉइस, उसमें भी फिर हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे को कौन से डीलर से लेना है, ऑनलाइन में हमारे को कौन सी वेबसाइट से जाके लेना है, या कौन से ब्रांड से मतलब कौन से डीलर से लेना है। भले अब अगर मैं एक दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में भी बहुत सारे कैनॉट प्लेस के डीलर से लेना है, या मेरे को अपने आस पास में द्वारका के डीलर से लेना है, या रोहिणी के डीलर से लेना है, कहाँ से लेना है वो भी डिपेंड करता है, कौन से आउटलेट से लेना है। देन परचेज अमाउंट, हमारा अब कितना बजट है उसके हिसाब से हमारे को अपने प्रोडक्ट चॉइस करने पड़ेंगे। परचेज टाइमिंग, हमारा मतलब किस टाइम पे हमने उस जाको ख़रीदना है, आप सपोज़ करिए अब जैकेट्स हैं वो तो विंटर टाइम में परचेज़ करी जाएगी, और जो टी शर्ट्स हैं वो समर टाइम में, तो टाइमिंग भी डिपेंड करती है, और हमारे को कब चाहिए, उसकी नीड और वॉन्ट कब है वो भी मैटर करता है। फिर हम पेमेंट मेथड भी मैटर करता है कि अब हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन करेंगे या COD करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, या वहाँ पे जाके ले रहे हैं तो कैश देंगे या कार्ड से देंगे, या इंस्टॉलमेंट भी हो जाती है, या हम क्या किस मोड से हम पेमेंट ले रहे हैं, या अपने वॉलेट्स यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट पेटीएम वॉलेट हो गया, ये सारे के सारे वॉलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने डिसीजन को फाइनलाइज करेंगे। और मोटिवेशन थ्योरी तो हम जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे को अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना होता है, फिर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती है हमारी वो होती है बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, फूड वाटर एंड शेल्टर, तो अगर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरे जाते हैं तो उसके बाद हम सेकेंड नीड्स पर जाते हैं सेफ्टी नीड्स, जिसमें हमारी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, जैसे एक छोटा घर हो गया वो हो गया, और उसमें हम अपने आप को मतलब सिक्योरिटी भी मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पर्पस है, जब हम चीज़ें सोचते हैं तो वो हमारी उसमें आ जाती है सेफ्टी नीड्स में, बेसिक से ऊपर थोड़ी सी कि जिसमें हम अपनी और भी चीज़ों को देखते हुए कि हम एक लॉक में रहे, उसमें रहे, सेफ्टी रहे, हमारे को कोई ऐसे परेशान ना रहे। मतलब जैसे एक नॉर्मल एक शेल्टर है, एक झुग्गी में रह रहा है शेल्टर, तो उसके पास भी है, लेकिन एक कोई अपने रेपुटेड घर में रह रहा है तो मिडिल क्लास टाइप, तो वो सारे के सारे सेफ्टी नीड्स को देखते हुए चल रहे हैं। देन थर्ड आता है सोशल नीड्स, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लव। अब इसमें सोशल नीड्स में मतलब बेसिकली वो समाज से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से प्यार कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो सोसाइटी के अंडर में वो अपने लेवल, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा रहा है और आगे बढ़े जा रहा है दूसरों की भी हेल्प करके। देन फोर्थ आता है एस्टीम नीड्स, सेल्फ इस्टीम, रिकॉग्निशन एंड स्टेटस। एस्टीम नीड्स में मतलब जहाँ पे उसको पास मनी भी है, दूसरों की हेल्प भी कर, और एक उसने अपने आप की एक रिस्पेक्ट बना लिया है वहाँ पे, मतलब लोगों के इतने हाई लेवल पे कर रहा है, खुद का स्टेटस बढ़ गया कि वो खुद ही एक ब्रांड बन चुका है, या कोई उससे मिलेगा तो उसका कुछ ना कुछ, उस पर्सन का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, या उसकी एक वैल्यू बन चुकी है, तो उसने अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर दिया, स्टीम बना लिया। देन फोर्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन। अब उसने जो सबसे बेसिक नीड है जिसमें आप बहुत कुछ आपको पा लेते हो, जैसे ऑडी इवन सब कुछ, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो, चीज़ों को बढ़ा रहे हो, एक सुप्रीम लेवल की जो नीड्स जहाँ पे हमारी वो जो है फुलफिल हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ हमारा हाई हो चुका है, हम बस अब सोसाइटी के लिए और अपने लिए सेल्फ को डेवलपमेंट करें, सेल्फ एनालिसिस करके अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारी लर्निंग वगैरह सारी की सारी चीज़ें चल रही है। अब जो हमारे इमोशंस को देखते हुए, मेमोरी को देखते हुए, और तो ये सारी की सारी हमारी नीड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा हमने कंज्यूमर मार्केट्स के अंदर पढ़ा कि वो कैसे कैसे उनकी नीड्स और कंज्यूमर के लेवल पे उनके बाइंग बिहेवियर को समझते हुए, उनके सारे के सारे रिसर्च एनालिसिस करते हुए, पोस्ट मार्क परचेज, और उन्होंने कैसे कैसे मतलब सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है हमने एक मोटा मोटे लेवल पे समझा, पढ़ा और उसको एनालिसिस किया। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर।